मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप सबसे ऊर्जा के स्रोत के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं, और दरअसल इस विषय के बारे में मेरा विचार कल तैयार हुआ। आप लोगों ने आज के अखबारों में पढ़ा होगा या न्यूज में सुना होगा कि कल स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि थी। बहुत कम उम्र में वे हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे, लेकिन यह ताकत उनमें नहीं थी कि वे हमारी स्मृतियों से जा सकें, हमारी आत्मा से जा सकें, या हमारा जो इतिहास है उससे जा सकें, हमारे व्यवहार से जा सकें, हमारे चिंतन से जा सकें, यह ताकत उनमें नहीं थी। तो दोस्तों, मुझे लगा कि ऊर्जा के स्रोत के बारे में इसी को आधार बनाकर मुझे कुछ बातें आप सबसे करनी चाहिए, और दरअसल इसके पीछे एक कारण और भी है, और वो कारण मुझसे सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, और मैं माफी चाहूंगा कि मैं उस कारण का उल्लेख यहां कर रहा हूं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे बाहरी ऊर्जा की जरूरत ना पड़ती हो। ठीक है, हम सबके अंदर एक आंतरिक ऊर्जा होती है, हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उसके बारे में निर्णय ले लेते हैं और इसमें फिर जुट भी जाते हैं, लेकिन अगर काम थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा कठिन है, तो बीच बीच में बाधाएं आएंगी। जितना बड़ा काम उतनी बड़ी बाधाएं, और जितनी बड़ी बाधाएं उतना लंबा निराशा का दौर। निराशा के दौर भी आते हैं, लगता है कि हम नहीं कर सकेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, जिंदगी तो अब खत्म हो गई, जिंदगी में अब कुछ भी नहीं रह गया है, हम तो किसी काम के नहीं है, इस तरह के विचार सब में आते हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं, मेरे दिमाग में इस तरह का कोई विचार आया ही नहीं, तो मान करके चलिए कि वो अपने को ज्यादा हीरोइक अंदाज में आपके सामने रखना चाह रहा है, अपने को एक सुपर ह्यूमन बीइंग के रूप में प्रोजेक्ट करना चाह रहा है। अदरवाइज हम सब मनुष्य हैं और सब इस तरह की भावनाओं का कभी न कभी एहसास करते ही करते हैं। अब ये बात अलग है कि कोई इसके चंगुल में बुरी तरह से फंस करके अपनी जिंदगी को गंवा बैठता है, कोई इससे बहुत जल्दी उबर जाता है, किसी को उबरने में थोड़ा सा वक्त लगता है, कोई अपनी ही ताकत के दम पर अपने आप को उबार लेता है, कोई ऐसा होता है जिसे बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है। ये बात अलग हो सकती है, लेकिन निराशा तो मन में पैदा होती ही होती है। ठीक उसी तरह से जैसे आप कोई भी अच्छी फसल बोलें, अच्छी जमीन हो, अच्छा बीज भी डालें, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि घास पतवार ये कहां से उगाया। जब घास पतवार उगाते हैं तो आप उन्हें उखाड़ कर फेंक देते हैं, आपकी फसल लहलहाने लगती है। तो हमारे जीवन में भी दोस्तों यही होता है, इसमें मैं भी शामिल हूं। जब 9वीं कक्षा के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई और मैं गांव में ही रह रहा था, गांव में रहने के लिए बाध्य हो गया, तो मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था कि अब मेरी पढ़ाई जारी रह सकेगी। मुझे लगता था कि ठीक है, दुकान है, बाजार कर रहा हूं, मैं हाट बाजार में जा रहा हूं, इसी में कुछ बेहतर करने की कोशिश करूं, लेकिन मन के अंदर कहीं ना कहीं एक निराशा तो घर कर ही गई थी, क्योंकि मेरे लिए वह जो जीवन था वह सब कुछ नहीं था। मैं कुछ और करना चाहता था, कुछ और पाना चाहता था, लेकिन क्या करना चाहता था, क्या पाना चाहता था, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। लेकिन एक बात तो मुझे मालूम थी कि काश मेरी पढ़ाई कंटिन्यू हो सकती, काश मैं पढ़ पाता, ये जरूर मेरे दिमाग में ये मौजूद रहती थी। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। गांव में उससे आगे के स्कूल नहीं थे, 8वीं के बाद के, पढ़ाई आपकी छूट चुकी थी, कोई साधन, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आपको घर परिवार संभालना था। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए निश्चित हो चुका था कि अब बस इसी में मैं जो कुछ भी कर सकता हूं करूं। आप सोच सकते हैं कि अंदर कितना गहरा अंधेरा होगा। दोस्तों, इसी दौर में मुझे विवेकानंद दिखाई दिए। विवेकानंद, मैं एक बार शहर गया हुआ था, तो वहां जो गायत्री शक्तिपीठ के जो मंदिर होते हैं, वहां मैं ऐसे ही चला गया, तो उस समय टीन पर, एल्युमिनियम की छोटी छोटी पतरियों पर डायलॉग्स लिखे हुए मिलते थे। डायलॉग्स, अलग अलग तरह के डायलॉग्स जो जीवन से संबंधित होते थे, जो श्री राम शर्मा आचार्य जी के होते थे। कुछ तो मैंने वो लिए, और इसके बाद फिर जब मैं एक किताब की दुकान पर गया, वो सरदार जी की दुकान थी, सच में उनकी जब स्मृति आती है तो मैं उनको प्रणाम करता हूं, उस दुकान पर गया, मैं ऐसे ही किताबों की दुकान पर चला जाता था जैसे कि वो मुझे बुला रहे हैं। मुझे लेना वना कुछ नहीं होता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये तो मंदिर है, यहां जाना चाहिए, तो मैं चला गया। तो वहां मैंने देखा कि विवेकानंद जी का एक कोटेशन इसी तरह के एल्युमिनियम के स्लिप पे लिखा हुआ था, विवेकानंद जी। पतली सी वो स्लिप जैसी एल्युमिनियम की पट्टी थी, उसके सबसे ऊपरी छोर पर एक छेद था जिसमें एक धागा बंधा हुआ था, यानी कि आप उसे दीवार पर टांग सकते थे। धागे के नीचे फिर विवेकानंद जी की काल ब्लैक एंड व्हाइट एक तस्वीर थी जिसमें वो अपने दोनों हाथ बांध करके अपने सीने पर अदक करके खड़े थे, लेकिन वो पूरी तरह से खड़े दिखाई नहीं दे रहे थे, उनके कमर के नीचे का बस थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था। और इसके बाद नीचे उनका कोटेशन था, पूरा कोटेशन मुझे याद नहीं है दोस्तों, लेकिन उसमें लिखा हुआ कुछ इस तरीके का था कि कभी यह मत कहना कि मैं नहीं कर सकता, तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर आगे था, तुम सर्वशक्तिमान हो। और ये हो, पता नहीं जैसे मैंने वो कोटेशन देखा तो मुझे लगा कि इसकी जो किरणें हैं वो मेरे अंदर बुरी तरह से भड़भड़ा करके समा रही हैं, मुझे अपनी बिल्कुल आगोश में ले रही हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये कितने का है, बोले कि नहीं नहीं ये बेचने का नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि मुझे ये चाहिए, अगर आप मुझे दे सके तो आप बता दीजिए कितने का होगा। तो पता नहीं उनको क्या लगा, बोले कि नहीं बेटे ऐसे ही ले जाओ, तुम बेचने का नहीं है लेकिन तुमको अच्छा लग रहा है तो ले जाओ। और दोस्तों मैं वो ले आया। ये तब तक मेरे साथ रहा जब तक कि मैं सच में जो पाना चाहता था, हालांकि पाना चाहना तो कभी पूरा नहीं होता है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं अब खो गया। लेकिन उनके अक्षर आज भी मेरे दिल और दिमाग पर खुदे हुए हैं, भाव तो कम से कम खुदे ही हुए हैं। तो दोस्तों ये ऊर्जा का एक स्रोत था मेरे लिए जिसने मेरी जिंदगी की पूरी धारा को बदल दी और जिससे लगातार मैं एनर्जी गेन करता रहा हूं। इस पर हम लोग और आगे बातें करेंगे। अब मुझे आप इजाजत दें, नमस्कार।